Om Shanti. Very good morning. Very good morning. Golden morning. Is not cold morning? So today, आज बाबा ने मुरली के अंदर कॉन्ट्रास्ट बताया है भक्ति का और ज्ञान का. ज्ञान से क्या मिलता और भक्ति से क्या मिलता है. दोनों से मिलता है. अगर मिलता नहीं तो फिर हम लोग भक्ति कंटिन्यू नहीं करते. भक्ति को भी तो आधा कल्प चलना है ना. तो बाबा ने कहा कि अगर हम कोई नौधा भक्ति करते हैं, इंटेंस भक्ति करते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, साक्षात्कार हो जाता है. अल्पकाल की थोड़ी सी प्राप्ति हो जाती है. तो जो प्राप्ति होती है उसको प्राप्त करके लगता है कि भगवान है इसमें भी, तब तो दिया. तो सर्वव्यापी का कॉन्सेप्ट इस तरह शुरू हो गया कि मैंने इसको पूजा, इसको भजा, इसको प्रार्थना की और हमको इससे प्राप्ति हो गई, है भगवान उसमें. सर्वव्यापी समझ लिया. श्रद्धा बहुत अच्छी चीज है, अंधश्रद्धा में बदल गई. तो बाबा आकर फिर बताते हैं एकदम गीता का स्टेटमेंट, जो जिसको भजते हैं वह उससे प्राप्त करते हैं, मुझे नहीं. तो आज मुरली के अंदर बाबा ने वही कहा कि कोई कृष्ण की भक्ति, नौधा भक्ति करता है, कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है. कोई हनुमान की करता है, हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है, भक्ति की प्राप्ति वो है. लेकिन ज्ञान जो बाबा आकर हम बच्चों को देते हैं, ज्ञान का सागर, भक्ति से सदगति नहीं सुनी है, ज्ञान से सदगति. ज्ञान से हम कृष्णपुरी में जाने लायक बनते हैं. ज्ञान रतन है, हमारी वैल्यू, जीवन की वैल्यू ज्ञान से होती है. हमें ज्ञान रत्नों से सजना है और ज्ञान रत्नों से ही औरों को भी सजाना है, डेकोरेट करना है, वैल्यूबल बनानी है औरों के जीवन भी. बाबा ने कहा यही आपका बिजनेस है, धंधा है. बिजनेस है ज्ञान रत्नों को धारण करना और ज्ञान रत्नों को औरों को देना, ये हमारा धंधा है. तो ज्ञान से प्राप्ति और भक्ति से. बाबा के महावाक्य सुनते हैं. मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं रत्नों का धंधा तुमको करना है. तुम यहां ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं. प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा के किस वंडरफुल नूंद को, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं. समझते हैं वो ड्रामा में है, फिक्स्ड है, लेकिन समझते भगवान करा रहा तो भगवान की महिमा करते हैं. कौन सी ऐसी ड्रामा की नूंद है, दुनिया वाले समझते भगवान करते, भगवान की बड़ाई करते हैं. आंसर, जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है. तो वह समझते ये भगवान ने साक्षात्कार कराया। लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक ओर भगवान की बड़ाई करते और दूसरी तरफ सर्वव्यापी कहकर ग्लानि भी कर देते हैं। ओम शांति। भगवान वाच। बच्चों को ये तो समझाया हुआ है, मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जा सकता। समझ में आता है ना? मनुष्य को, इवन चैतन्य मनुष्य को भी भगवान नहीं कह सकते। उससे भी ऊंचे देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते। तो सर्वव्यापी कैसे? समझ में आता है ना? गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। देवता संबोधित करते हैं इन तीनों को देवता से। फिर कहा जाता शिव परमात्माए नमः। बोलने में अंतर करते हैं ना? शिव को देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। बोलने में अंतर करते हैं ना? ऊंचा, देवों का भी देव शिव बाबा। इसलिए कहते शिव परमात्माए नमः। ये तो तुम जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और सालिग्राम है ना? आत्मा अपने बिंदु फॉर्म में रहती है, सालिग्राम रूप में। बच्चे जानते हैं अभी हम आत्माओं को बाबा पढ़ा रहे, और जो भी सत्संग है वास्तव में वो कोई सत्य का संग है नहीं। बोलते हैं सत्संग गए, लेकिन जो सुन के आए उसमें सत्यता है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते वास्तव में वो कोई सत्य का संग है नहीं। बाबा कहते वो तो माया का संग है। वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, फलाने ने लिखा है कथा सुन के आ गए, फलाने ने लिखा फलाने की बातें। वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे ना तो श्री कृष्ण भगवान वाच्य समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता, क्योंकि अपने धर्म को नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सबका प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? अभी हमें पता है सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा है, उसको झुलाएं कैसे? वो तो बिंदु रूप है, बिठाए कौन से झूले पर? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? फिजिकल झूले में तो नहीं झुलाएंगे, वैसे तो जरूर झुलाएंगे नहीं? बच्चे को झुलाते प्यार से ना, तो बाबा को भी हम अपने दिल पे बिठा के नहीं प्यार करें? नहीं करें? बाबा हमारी जीवन इतनी ऊंच बना रहे, तो बाबा पूछ रहे तुम मुझे कहां झुलाएंगे, कैसे झुलाएंगे? तो हमको आंसर करना चाहिए ना, बाबा आपको तो हम अपने दिल पे, दिल के झूले में बिठा के खूब झुलाएंगे, खूब प्यार करेंगे, नहीं? वही तो योग है। बाबा और मैं हमारा जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये इतना प्यार का होना चाहिए। पहले उलहना का होता था, ज्ञान में आने से पहले कमेंट्री डिफरेंट थी भगवान के साथ। अभी हमारे बाबा के साथ कमेंट्री डिफरेंट है। जितना प्यार करो ना बाबा को, उतना अच्छा है, उतना हमारी जीवन खुशहाल होती है, मस्त रहते हैं, नशे में रहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वो बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, फिजिकली बालक बनकर आते नहीं, पुनर्जन्म लेते नहीं, वो है बिंदु, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का तो भूतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारे विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। वो बोला ना, मुंह खोल मुंह खोल, कृष्ण जी को बोला मुंह खोल, दिखा क्या है तेरे मुंह में, मक्खन चोरी किया? तो बोला मुंह खोल। तो जब उसने मुंह खोला तो क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड। अब वो कौन सा मक्खन, कौन सा ब्रह्मांड, कौन थे वो श्री कृष्ण, कुछ पता नहीं है भक्ति के अंदर। अभी हमको मालूम पड़ता है कि पूरा एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, होल एसेंस ऑफ द वर्ल्ड इज इन हिज फॉर्च्यून, उनके भाग्य में। वो पूरे ग्लोब का प्रिंस, पूरा एसेंस वर्ल्ड का सार उस आत्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि प्रीवियस बर्थ में ब्रह्मा बाबा के फॉर्म में क्या नहीं किया, तो उन्होंने उस रीति दिखा दिया, पूरा ब्रह्मांड उसके मुंह में। तो वो कहां, अगर ब्रह्मांड उसके मुख में है तो वो कहां थे, क्वेश्चन नहीं कोई कर सकता। तो श्री कृष्ण के मुख में तो सारे विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी माखन है एसेंस, वो जो आपस में लड़ते हैं ना, वो भी सृष्टि रूपी माखन के लिए ही लड़ते हैं कि हम राज्य ले ले, हम राज्य ले ले। समझते हैं हम जीत पा ले। लेकिन भारत के अंदर क्या लिखा है, कौन जीत पाता है? सत्य मेव विजयते। विजय किसकी है? जो सत्य में जीता है, विजय उसकी है। आत्मस्मृति में मैं जीऊं तो मेरी विजय है। वो समझते हम जीत पा ले। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते, वो भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते, परंतु अर्थ तो कुछ नहीं समझते हैं। यहां तुमको साक्षात्कार का अर्थ भी समझाया जाता है। साक्षात, साक्षात दर्शन माना दिव्य दृष्टि से, ज्ञान के आधार पर हम जो समझते हैं वो है रियल साक्षात्कार। फिर हम डावाडोल नहीं हो सकते हैं, कोई भी माया का रूप हमको ले जा नहीं सकती है। स्थूलता आ जाती है ज्ञान से, समझ से। माया का कोई भी रूप काम नहीं कर सकता है। साक्षात जो रियलिटी है उसको अगर मैंने दिव्य बुद्धि से समझ लिया, दैट्स इट। तो भक्ति का एक ग्लिम्स आना और ज्ञान मार्ग का सत्यता का बोध होना, कितना अंतर है। तो यहां तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं, ये भी बाबा समझाते हैं, जिसको याद करते हैं। समझो कोई श्री कृष्ण की नौधा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। कौन नहीं कराता है? कोई नहीं कराता है। ये भी ड्रामा में फिक्स्ड है। क्या ड्रामा में फिक्स्ड है? बहुत अलर्ट होके सबको मुरली सुननी है ना। भगवान के महावाक्य भगवान मेरे लिए सुना रहा है, बहुत अलर्ट होना है। वो लोग क्या समझते हैं? भगवान ने साक्षात्कार कराया लेकिन बाबा ने नहीं कराया, ये ड्रामा में फिक्स्ड है, नोंद है। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते उनको वो साक्षात्कार हो जाता है, हो जाता है। ये ड्रामा में नोंद है। ये तो भगवान की बड़ाई की है कि वो साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते और दूसरी तरफ फिर कह देते हैं पत्थर ठिककर सब में बैठा है, सब में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। जाएंगे श्री कृष्णपुरी में? जाएंगे? अरे श्री कृष्णपुरी है कहां? कैसे जाएंगे? उसमें जाने के लिए तो उसके लायक बनना होगा, तब वो दुनिया आएगी, तब हम जाएंगे। अभी कहां से जाएंगे? साक्षात्कार हुआ, समझते हम श्री कृष्णपुरी में जाएंगे, परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहां से, है कहां? ये सब राज बाप तुम बच्चों को अभी समझाते हैं, इसलिए हमको हर बात को समझ समझ कर समझना है। श्री कृष्णपुरी की स्थापना तो हो रही है, ये तो है क्या कंसपुरी, कंस के समय की जो स्टोरी लिखी गई है ना, क्या वो दिख नहीं रहा है आज? सारे सिम्टम्स, सारी बातें क्या दुनिया में नहीं दिखाई दे रही है? हम सब देख रहे हैं आज की दुनिया में क्या हो रहा है। ये है वो कंसपुरी। कंस अक्कासुर बक्कासुर कुंभकर्ण रावण ये सब असुरों के नाम है। असुर, असुर माना क्या? सुर रिदम मैच होता है ना, असुर नहीं होता। एक बोले दूसरा नहीं, उसको नहीं पसंद आता है। सुर नहीं मिलता है। हर एक के ओपिनियन अपने अपने हैं, कोई एक दूसरे से मैच नहीं होता है, तो क्या हो गया? असुर। तो बाबा कहते हैं अकासुर बकासुर कुंभकर्ण रावण ये सब असुरों के नाम है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठकर लिख दिया। ये भी समझाना है, गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वो भक्ति ही सिखलाते। ये बाप तो है ज्ञान के सागर, इनको सतगुरु कहा जाता। ये कभी भक्ति नहीं सिखलाते हैं, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं। गुरु माना जो दिमाग का ताला खोले, सत्यता का बोध करावे, जिससे मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। और वो गुरु ताला बंद करते, जो सुनाते हैं बोलो बोलो सतवचन महाराज, दिमाग नहीं चला, क्वेश्चन नहीं करो, बोलो सतवचन महाराज, दिमाग चलना बंद होता है। शिव बाबा दिमाग चलाते। कितना अंतर दोनों के बीच में, दो प्रकार के गुरु है। ये गुरु तो ज्ञान सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांज बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। सब देवी देवताओं को रखते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए। इट्स लाइक अ दुकानदारी। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का। इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। व्यापार में लेते हैं कुछ, देते हैं कुछ। तो हम लोग ज्ञान रत्न देते हैं और क्या लेते हैं उनसे? पांच विकार। दादियां कहा करते थे, पांच खोटे सिक्के हम बाबा को दे दो, पांच खोटे सिक्के। हाँ, कितना अच्छा बिजनेस है ना। पांच खोटे सिक्के, खोटे माने कोई सुख नहीं मिलता है उनसे, काम के नहीं है, ये व्यापार है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये रत्न कौन से हैं? इन बातों को समझेंगे वही, इन बातों को समझेंगे वही कौन? कौन? जिन्होंने कल्प पहले भी समझा है। चाहे कितना ही आईक्यू क्यों न हो, समझ दुनियावी क्यों न हो, लेकिन अगर दैवी घराने की आत्मा नहीं है, ये बात समझेंगे नहीं। समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे तो समझेंगे ही नहीं। ये बात हमको समझना है। ये क्वेश्चन नहीं करना, ये समझते क्यों नहीं है? बाबा कहते नहीं समझेंगे, हमको ये बात को समझ लेना है। जो भी बड़े बड़े हैं वो पिछारी में आकर समझेंगे, कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते, जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहां वो सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण और कहां ये? वो तो के नाम होते कृष्ण, राधे कृष्ण भी नाम होते हैं, लेकिन कहां वो रियल कृष्ण और कहां ये? फर्क तो है ना। कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे वो महिमा गाती है। नाम खुद का भी लक्ष्मी है लेकिन लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाती है। ये थोड़ी समझती है कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ, किस लिए हुआ? लक्षणों से, क्वालिटीज से, प्योरिटी से फर्क है ना। नाम रख लेना, उसमें कोई खर्चा थोड़ी लगता है। नाम तो रख लिया, बड़े से बड़ा नाम रख लिया। और नाम ये एक ऐसी चीज है जिससे हम इतने ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मेरा नाम, बिना पूछे ही तो हमको दे दिया गया नाम। आपसे पूछा था क्या कि आपको ये नाम दे क्या? हम लोग से कोई से भी नहीं पूछा गया, दे दिया गया और हमने एक्सेप्ट कर लिया और इससे इतना इतना जुट गए। तो बाबा कहते कि जो लक्ष्मी नाम दे दिया लेकिन वो भी तो लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करती, उनकी महिमा करती है। उनको ये पता ही नहीं है कि वो लक्ष्मी बनी कैसे। लक्षणों से, गुणों से, क्वालिटीज से। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। समझ में आ रहा है ना? अभी बाबा ने हमको सब समझ दी है। तुम्हारे ही 84 जन्म, तुम ही 84 जन्म लेंगे। ये चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। कितनी बार फिरा वो बाबा नहीं बताता है, है ना? क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट कल्प में एक ऐड करके उसको बताना पड़ेगा। बाबा कहते हूबहू जो ज्ञान मैंने दिया वो ही दूंगा। कितनी बार रिपीट हुआ वो नहीं बताते हैं। अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं। बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इतना समझते हैं कि खेल है, बना बनाया है, जो लिखा है वो होके रहेगा, होने को कौन टाल सकता। इसी थोड़े थोड़े ऐसे सेंटेंस है जो सब लोग को पता है, ये नाटक है, थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन कैसे रिपीट होता, उसमें हम कैसे पार्ट प्ले करते वो कुछ भी मालूम नहीं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते पड़े है, वहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है, तो अंधेरा है क्या वहां पर? सूर्य चांद की रोशनी नहीं है परमधाम में, तो क्या अंधेरा है क्या? उस धाम को क्या बोलते हैं? ज्योतिलोक, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। तो वहां पर जो भी है वो सब प्रकाशमय है, आत्माएं भी ज्योति है ना, शिव बाबा भी परम ज्योति है ना, तो फिजिकल प्रकाश नहीं है, लेकिन वो है प्रकाशमय दुनिया, ज्योति लोक, द वर्ल्ड ऑफ लाइट। वहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। ये सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अभी भारत ही सबसे गरीब बना, सारा खेल भारत पर है। मैंने और तो सब बाई प्लॉट है, एक्स्ट्रास में है, भारत मेन है, सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं, पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहां होता ही नहीं है। बाबा ने समझाया, ये सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, सब अलग 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 हो गया कॉन्टिनेंटल्स, वो सब इकट्ठे होंगे, सब जुट जाएंगे, एक ही खंड रहेगा और कोई खंड नहीं रहेगा उस टाइम पर। बाबा ने समझाया, ये सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, जैसे लंका टापू है, दिखाते रावण लंका में रहता था, अभी तुम समझते रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। किसके ऊपर है रावण का राज्य? किस पर है बेहद की लंका? माना सबके दिलों पर रावण राज्य कर रहा है, सब सबके दिमाग में रावण का राज्य चल रहा है, रावण ने ओवरपावर कर रखा है। उससे बाबा आते हैं तो स्वराज्य दिलाते हैं, रावण से लेकर राज्य, हमारा राज्य हमें दिलाते हैं, हमारे मन पर रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारे बेहद की लंका पर है, ये सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, ये टापू है, इस पर रावण का राज्य है, ये सब सीताएं रावण की जेल में है। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी, ये है सारी बेहद की कथा, बेहद की बात, बेहद का नाटक है, इसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक भी बैठ बनाते, ये बायोस्कोप आदि भी अभी बने, तो बाबा को भी समझाने में सहज होता है, क्योंकि जो बायोस्कोप बना मूवीज होती हैं तो उससे बाबा को भी एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी भी बुद्धि में हो न सके। मतलब इतना जानते हैं कि तीन वर्ल्ड होते हैं, त्रिलोक होते हैं, शिव बाबा को बोलते हैं त्रिलोकीनाथ, लेकिन वो कहां है, कैसे जा सकते हैं, कुछ पता नहीं है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी भी बुद्धि में हो न सके। तुम जानते हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं, देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं हैं ना, वो है सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते। वहां हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं, ये शरीर हड्डी मांस का पिंजरा वहां नहीं होता। ये सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है। ये जो सटल वर्ल्ड है, खाली संगम पर बाबा बनाते हैं, बाद में नहीं रहता है। ये सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है, अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो। जब हम आत्माएं सत्युग में आएंगे ना, तो डायरेक्ट आएंगे, थ्रू सटल वर्ल्ड नहीं, डायरेक्ट आएंगे। जाते हैं तो उस समय पर तीनों है। तो सूक्ष्म वतन जो बाबा ने बनवाया जस्ट ट्रांस मैसेंजर्स के लिए, मैसेज लेन देन के लिए, टेम्पररी है, सूक्ष्म ही है। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आते हो, सीधे आते हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाते हो, अब भी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। ये सब राज बच्चों को समझाते हैं। जब सत्युग स्थापन हो जाएगा ना, फिर सूक्ष्म वतन की जरूरत नहीं। कुछ बहुत ही लक्की सोल्स वो ही सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से मुलाकात करके आती हैं, ट्रांस में जाकर मैसेज लेकर आती हैं। जब स्थापन हो गया सत्युग, पीछे उसकी जरूरत ही नहीं है सूक्ष्म वतन की। अब ये सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाबा जानते हैं हम आत्माओं को समझा रहे हैं, मतलब बाबा भी जानते कि मैं आत्माओं को समझा रहा हूं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं, वह कभी ऐसी बात कर ही ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं, ऑर्गन्स बिगर तो बात कर ना सकूं। शिव बाबा को तो ऑर्गन्स नहीं है ना, राइट? रमेश भाई मुंबई वाले वो हंसाते थे कि वो बेकार, उनको कार नहीं है। शिव बाबा को कार नहीं है, फिर कहते थे बेकार है, बे गुजराती में बे माना दो, कौन से दो कार है शिव बाबा को, एक ब्रह्मा बाबा और दूसरा दादी गुलजार, तो दो कार है, लेकिन वो सब टेम्पररी, उसको अपनी नहीं है। अच्छा, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको समझाते हैं। शिव बाबा में सारा ज्ञान है, छोटू ज्योति बिंदु सारा ज्ञान भरा है, लेकिन उसको भी कन्वे करने के लिए ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार लेना पड़ता है। जैसे देखो पेन ड्राइव है छोटू, उसमें सब डेटा भरा है, लेकिन हमारे पास है लेकिन हम उसको पढ़ सकते हैं क्या, उसको एक्सेस कर सकते हैं क्या, डेटा को नहीं कर सकते ना। उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए ना। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा डिवाइस है शिव बाबा का, जिसके थ्रू हम सब समझ सक रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा का इंपॉर्टेंस भी तो कितना हमारे जीवन में है। तो बाबा कहते ऑर्गन्स बिगर तो बात कर नहीं सकते, कहते हैं मैं इस शरीर का आधार लेकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है, ये सब है नई बातें। निराकार बाप उनका नाम है शिव बाबा, तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है, तुम्हारे शरीर के नाम बदलते रहते हैं। जितने शरीर, जितने शरीर के माँ बाप, उतने हमारे नाम बदलते रहते। मनुष्य कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना, शिव की पूजा भी तो करते हैं ना, तो रूप भी तो बनाते हैं ना, नाम भी तो दिया है ना, न्यारा कैसे कह सकते हैं। धाम भी तो है ना, ऊपर करके उसको बुलाते हैं ना, ऊपर वाला बोलते हैं ना, तो धाम भी तो हुआ ना। मनुष्य कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना, शिव की पूजा भी तो करते हैं ना। समझते एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को समझ गए हो, समझ गए हैं ना। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगर हो ही नहीं सकती है। ये बहुत सूक्ष्म, यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। क्या बहुत ही समझने की बात है जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, कि उनका नाम रूप देश काल सब है, सब है। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाबा समझाते गायन भी है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवनली गॉड द फादर है और हम उनके बच्चे हैं, तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे ना, वो हेवन स्थापन करता और हम उसके बच्चे, तो हेवन किसका है? जो बाप का वो हमारा ना, नहीं? कितना नशा होना चाहिए कि बाबा हमारे लिए हेवन स्थापन करते हैं। हम उनके बच्चे बने तो भी हम स्वर्ग के मालिक ठहरे ना, परंतु ये भी समझते नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है, नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। राजयोग है ना, कैसे बनेंगे? राजयोग से। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता, इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं। लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे तो बाबा कह रहे हैं बैक में विष्णु का चित्र होगा, अर्थात विष्णुपुरी में इनका राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वो है श्री कृष्णपुरी और ये है सत्युग है कृष्णपुरी और ये है कंसपुरी। यहां हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कुछ अच्छा। अगर कुछ अच्छा मिल गया, अहो भाग्य, इट्स अ रिवॉर्ड। ये कंसपुरी ड्रामा अनुसार ये भी नाम रखे हुए हैं। बाबा समझाते मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंक बना देते, नहीं तो पूजा कैसे करे? ज्योति बिंदु को अगर चुट्टू को रखे तो कैसे पूजा करे? इसलिए लिंक बना देते। रुद्र यज्ञ रचते तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते। तुम्हारे दूसरी तरफ उनको अजब सितारा भी कहते, चमकता है एक अजब सितारा। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई, रामकृष्ण जी से निकल उनमें आ गई विवेकानंद में। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, बिंदी देखा समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं परमात्मा का साक्षात्कार हो। वो बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें, बस कह दिया ज्योति थी, वो मेरे में समा गई। इसमें ही वो बहुत खुश हो गया, समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है ना, भगवान के साक्षात्कार की। समझते तो कुछ नहीं, भला भक्ति मार्ग में समझाए भी कौन? अब बाप बैठ समझाते, जिस जिस रूप में जैसी भक्ति करते, जैसी भावना रखते, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते, जो शक्ल देखते वो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश के बहुत पूजा करते तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देखते समझते हमने भगवान का साक्षात्कार किया, बस उसमें खुश हो जाते। ये सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। माना जो पावर, सोल पावर भर के आते हैं ना, तो द बेस्ट बर्थ उतरते ही। लेकिन फिर जन्म बाय जन्म हमारी पावर यूज होती जाती है, कम होती जाती है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता। बच्चे ही इन बातों को समझते। जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अभी समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाबा समझाते, एक एक चित्र में भगवान वाच लिख दो तो फिर आर्ग्यूमेंट नहीं होगा ना, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों कहा। इसलिए लिख दो भगवान वाच, भाई हमने नहीं बोला, भगवान बोल रहे हैं। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान वाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भाई, उनका ये चित्र है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो, नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है, तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। एक तरफ कहते भगवान को बाप है, दूसरा उसको जानते ही नहीं है, फिर कर वो रहे जो उसके विपरीत, तो फिर विपरीत बुद्धि कौन, कौरव, प्रीत बुद्धि कौन, पांडव, और यादव कौन, पेट से मुसल निकाले, अपने कुल का विध्वंस किया। अब सोचे तो जरा, पेट से मुसल निकलेगा, कितना आयरन होगा पेट में, लिमिटेड ना, बॉडी में आयरन होता है लिमिटेड, तो इतने मुसल निकाले पेट से और अपने कुल का विध्वंस किया, वो कौन यादव कौन, अरे सब दिख रहा है ना, इतने सारे बॉम्ब्स बना के मिसाइल्स, मुसल नहीं, मिसाइल्स, जो अपने कुल को विध्वंस करेंगे। तो क्या करत भाई पांडव कौरव यादव, अपने को सब क्लियर है ना। बाप से प्रीत नहीं है तो विनाश हो जाएगा, प्रीत बुद्धि विजयंती, सत्यमेव जयते। किसकी विजय है, किसकी जय है, जो सत्य में जीता है। इसका अर्थ भी ठीक है, बाप की याद ही नहीं है तो विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध करके बताते, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। ये तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं, कहां पर, कोर्ट में। अब दोनों पक्ष आकर के गीता को हाथ लगा के बोलेंगे, जो बोलेंगे हम सच बोलेंगे, पहले ही झूठ बोल रहे हैं, दोनों तो सच्चे नहीं होंगे एक तो गलत है ही। ये तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते, उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए या भगवान को। कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो, रोला हो गया केओस, तो कसम भी झूठा हो जाता। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा होना चाहिए, वो एनर्जी, वो खुशी, वो मस्त, दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ सेवा। वो खुशी से वो पैगाम देंगे, सत्य ज्ञान, बाबा का सत्य ज्ञान मैं दे रही हूं, उस भाव से देंगे तो वो लगेगी बात, सफलता मिलेगी सेवा में। डर डर के सुनाने से नहीं होगा सो सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए, नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी
गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर ये बनेंगे, तो वो हमारी पढ़ाई का जो फल है वो भी अभी के समय गुप्त है, दूसरे 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 जन्मों में मिलेगा। नई दुनिया स्थापन होती महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब यह नॉलेज मिली, ये भी नंबरवार धारण करते हैं। बच्चों में भी हम लोग सब नंबरवार धारण करते हैं। योग में भी हम लोग नंबरवार हैं। ये भी जांच रखनी चाहिए कि हम कितना बाबा को याद करते हैं, कितनी बाबा के याद में रहते हैं। बाबा कहते ये अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़े क्या जो 21 जन्म तक वो डिग्री होल्डर रहेंगे, वो डिग्री हमारी चलेगी? ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ी क्या? ये बाबा की पढ़ाई है। इससे हमारे संस्कार चेंज हो जाते हैं और वो संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। जब तक रहेंगे तब तक उसका फल मिलता रहेगा। कितनी ऊंची पढ़ाई है। इसलिए बोलते रूहानी पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई। बाबा कहते ये अभी तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, हाई स्टेटस नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में भी जाते रहते हैं, माना फेल होते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर भी आते रहते हैं। समझते ईश्वर तो सब कुछ देखता है ना, जानता है ना। अब बाप को क्या पड़ी है जो बैठकर देखेगा, क्योंकि उसने प्रोग्रामिंग कर रखी है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है ना। इज ए प्रोग्राम, देख देख करके उसको फल देना है क्या? जो जैसा करेगा उसका वैसा भरेगा, वैसा उसको पद मिलेगा, फिक्स्ड है, प्रोग्रामिंग है। तो एक एक को बैठकर शिव बाबा को देखने की जरूरत नहीं है। अब बाप को क्या पड़ी है जो वो बैठकर देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे भी कर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये तो तुम समझते हो काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। बाबा जाने न जाने बात तो एक ही है। उनको क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खानी चाहिए कि मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे? हां ड्रामा में है तो बता भी देते हैं। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना, छिपाना और भी खराब है। देखो गलतियां होती है, हो गई, सच बताओ ना, दिल पर आ जाते हैं। छोटी गलती है, छिपाया, कभी दिल पर नहीं आ सकता है। बाबा से छिपाया गोया अपनी सत्यानाश करना है। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पा लें। कोई मरावा जिया उनका फुरना नहीं, फुरना फिक्र रखना है बाप से हम वर्षा कैसे लें, फुल वर्षा लेना है। किसी को नहीं देखना है। बाबा कहते इट्स अ रेस, रेस के मैदान में स्पोर्ट्स में हमारा ध्यान मंजिल का रहता है कि बस पहुंचो वहां, ये रह जाएंगे बीच में। फुरना रखना है मंजिल पर पहुंचू कि मैं बाप से कैसे वर्षा ले लूं। हमको हमारा फुरना रखना है तो किसको भी थोड़े में समझाना है। समझा होगा तो समझा पाएंगे, थोड़े में ही अच्छी तरह से क्लियर करके समझा देना है। अच्छा मीठे मीठे सीख ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जो बोलते हैं उनकी नमस्ते पहुंचती है, जो नहीं बोलते हैं बाबा सौर नोट करता है। फिर से बोलेंगे, हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा का मुख्य सार है फर्स्ट, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। नशा चढ़ेगा नहीं, नशे का इंडेक्स चढ़ेगा नहीं अगर गलती होती है तो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं, अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। सेकंड है, सदा यही फिकर रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पा लें। सदा यही फिक्र रहे हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई भी विक्रम करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। सत्यमेव जयते, याद रखना है। वरदान, मन मना भाव के महामंत्र द्वारा, मन मनाभाव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मनाभाव के महामंत्र द्वारा दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आवे तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, अब दुख की क्या क्या बातें आ सकती है। तन बीमार हो जाए, कोई ऐसी डिजीज डायग्नोस हो जाए, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। कब? जब मैं मन मना भव रहूंगी, बाबा में मर्ज रहूंगी, तो दुख की लहर नहीं आएगी। जैसे सागर में लहरें आती है चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते जैसे खेल कर रहे हैं। वो ओशन में सर्फिंग करते हैं ना, तो ये लहरें आते हैं तो और ज्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। दुख की बातें आ सकती है, दुखी नहीं कर सकती है। अच्छा, स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ। दृढ़ रहो, डिटरमिंड रहो, तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में, एक ने कहा दूसरे ने हाजी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता में, एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संकल्प, जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो एकता कब आएगी? एक ने कहा दूसरे ने माना। जैसे दादियों का, आदि रत्नों का हम लोगों के सामने एग्जाम्पल है ना, ऐसे हम लोगों का आपस में प्यार हो, एकता हो, एक ने कहा दूसरे ने माना। ओम शांति।
ओम शांति। आज आदरणीय कुसुम दीदी जी हम सभी के बीच में प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनाने आए। हम एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करते हैं।
थैंक यू
दीदी जी। बहुत विशेष आत्मा है। अभी वर्तमान समय आप अमेरिका में मिलपिटास एक स्थान है, वहां पर अपनी सेवाएं अनेक वर्षों से दे रहे हैं। उसके पहले आपने भारत में मुंबई में भी अपनी सेवाएं दी। हम चाहेंगे यहाँ जो बैठे हैं दीदी जी को कौन जानते हैं जरा हाथ उठाएं। बहुत काम है दीदी, आप अपना परिचय भी दे और कुछ सुनाना चाहे तो 5-6 मिनट है, आप प्लीज कुछ सुनाएं।
sure.
जी
मैं अभी सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया मिलपिटस उसमें 30 साल से रह रही हूँ। बड़ी दादी जी ने ही भेजा था, इसी स्टेज पर छुट्टी दी थी 30 इयर्स पहले। जो भी रोल है बाबा ने दिया है वो प्ले कर रहे हैं। तो ज्ञान में तो बचपन से ही 3-3.5 साल की थी तब से ही ये ज्ञान में, माना पले ही यहां से, छोटे छोटे थे हम लोग मधुबन में आते थे पांडव भवन, उस टाइम ये तो था नहीं ओम शांति भवन। तो बच्चे से ही ज्ञान में रहने के कारण से सभी दादियों ने बहुत प्यार दिया। और ब्रह्मा बाबा से भी मैं मिली, जब 2 बार बाबा के पास आई थी तो एक बार तो बहुत ही छोटे थे, मम्मी पापा को ज्ञान मिला और उन्होंने कहा कि ऐसे बाबा को तो हम मिलना चाहते हैं। तो वहां के टीचर ने बोला आप नहीं जा सकते हो, अभी पूरी उसमें धारणाएं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, अभी तो आप अभी अभी आए हो ज्ञान में। तो उन्होंने बोला कि लेटर दे दो, जैसे भी हैं वो लिख दो, लेटर दे दो। तो बोला अभी हम लेटर दे ही नहीं सकते हैं आपको। तो उन्होंने तो टिकट बनाई और हम तो बहनें छोटे छोटे थे, हम लोगों को लिया चल पड़े। और ट्रेन के अंदर राजस्थान से होते हुए आ रहे थे ना, तो ट्रेन में 2 बहनें मिली व्हाइट ड्रेस में, ये लोग तो सब कलर में थे हम लोग सभी। तो उन्होंने बोला बहनों को मिले तो बोला ओम शांति, हम माउंट आबू जा रहे हैं। तो उनको बहनों को पता चल गया था कि ये पूरे ज्ञान में पूरा समझा नहीं है। बोला लेटर लाए हैं? बोला नहीं, लेटर तो दिया नहीं हमारी टीचर ने, हम मधुबन आ रहे हैं बाबा को मिलेंगे। तो वो बहनें पांडव भवन जब पहुंचे तो हम लोगों को रूम दे दिया और वो बहनें जाके ब्रह्मा बाबा को, दोपहर का टाइम था, बाबा को बोला कि बाबा एक परिवार आया है और बिना लेटर लिए आ गए हैं और हमने बात की तो हमको लगता है बहुत ही नए हैं। तो बाबा ने कहा कि लच्छू दादी को उनको बुला के लाओ, जल्दी जल्दी स्नान करके हमको बुला लाओ, बाबा फिर आराम पर जाएंगे। तो वो खट 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 हम लोगों को रखा था ऊपर ये हिस्ट्री हॉल के ऊपर, तो नॉक करने लगे और हमारे ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल के मम्मी जल्दी जल्दी नहला दिया। और हम रो रहे कि बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं। तो ठंडा पानी से ही हम लोगों को नहला करके तैयार करके और लेके गए। और बाबा ने तो इतना प्यार दिया, बाबा ने ये नहीं सोचा कि ये बिना चिट्ठी ले आ गए। तो हमारी मम्मी अनुभव सुनाती थी। और फिर बाबा ने बहुत प्यार दिया। और नेक्स्ट डे मुरली के बाद बाबा ने कहा कि टोली कौन बांटेगा, थाली के अंदर टोली लेकर बाबा खड़े हुए कि आज टोली कौन बांटेगा। तो मम्मी को आया मैं बांटू, लेकिन मैं तो इलीगल आई हूं। और तो शांत बैठी रही। फिर बाबा ने कहा कि जो पूरी धारणाओं पे चलेंगे वो टोली बांटेंगे, बच्ची टोली बांटेगी। तो मम्मी को पापा को उठाया और बोला आज से धारणाओं पे पक्के रहेंगे, पवित्रता तो अपना मेन चीज है। तो दोनों ने हां कर दिया और उनको टोली बांटने को दिया सभी को। और उस दिन से वो पवित्र रहने लग गए। देखो बाबा भी पहचान लेता है, बाबा को भी मालूम पड़ जाता है। और कैसे बाबा युक्ति रमजबाज, वो 27 इयर्स के थे उस टाइम, 27-28 इयर्स के यंग कपल, और वो पूरी धारणाओं पर उस दिन से शुरू हो गया उनकी धारणाएं। फिर हम लोग 2.5 दिन 2.5 डेज रहे। और उसके बाद फिर जब
सेकेंड टाइम जब मैं आई उस टाइम तो मैं 6.5 ईयर की थी, उस टाइम का तो मुझे पूरा याद है। हम लोग 21 दिन रहे मधुबन में और खूब प्यार मिलता था, खूब टोलियां मिलती थी। टोली तो नहीं खाते थे, तो बाबा को जब मुरली के बाद हम बाबा के चैम्बर में जाते थे ना, तो बाबा कहते थे सबको टोली देते थे और मेरे को, मैं बोलती थी मुझे टोली नहीं चाहिए, तो बाबा कहते थे तो क्या खाएगी बच्ची आप बताओ क्या खाएगी, तो मैं कहती थी मटर, माना टमाटर। तो बाबा लच्छू दादी को कहते थे बच्ची के लिए टमाटर लेके आओ, तो वो ऐसे छोटी कांसी कांसा की प्लेट में और थाली में 3-4 टमाटर लाती थी। तो बाबा पूछते थे कौन सा, तो मैं कहती थी जो सबसे बड़ा होता था पतला बड़ा वो पहाड़ी टमाटर, तो मैं कहती थी ये वाला, तो बाबा वो देते थे। फिर दूसरा भी लेगी, तो वो एक ही इतना बड़ा होता था, फिर मैं कहती थी हाँ, तो बाबा दूसरा भी दे देते थे, तो उसके ऊपर मैं दूसरा भी रख लेती थी। और फिर मम्मी डांटती थी कमरे में ले जाने का कि तुमने टमाटर मांगा क्यों। मैं बोला हाँ नेक्स्ट डे अगर टमाटर मांगेगी तो मैं नहीं ले जाऊंगी, मैं कहती मैं नहीं मांगूंगी। फिर बाबा पूछते थे तो फिर मैं क्या बोलूंगी तो फिर मैं टमाटर कितनी बार मैंने डांट सुनी होगी मम्मी से, और मम्मी उधर नहीं डांटती थी, कमरे में ले जाकर के डांटती थी तो ये सब बहुत बहुत बाबा की पालना मिली है। वो पांडव भवन का जो कोर्टयार्ड है ना, वहां तो हम कच्चा था पहले, तो वहां हम लोग बहुत घूमते रहते थे सारा दिन, दोपहर को भी, बच्चे लोग तो दोपहर को भी घूमते ही है ना, तो हम शोर भी करते थे कभी कभी, हम लोग को आंख भी दिखाते थे सब मधुबन वाले बड़े दादा दादी कि शोर नहीं करना है। और हम भागे झोपड़ी में, झोपड़ी से झूले पर, झूले से रूम पे, क्योंकि दोपहर को क्या सोएंगे, 21 दिन रहे थे। तो बहुत पालना मिली, उसके बाद दादियों ने इतना प्यार दिया, और फिर 30 ईयर्स से मैं यूएस में ही हूं। ओम शांति, थैंक यू।